ओम शांति
ओम शांति।
एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है, मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। एकाग्रता की शक्ति स्वतः एक बात दूसरा न कोई ये अनुभूति सदा कराती है। एकाग्रता की शक्ति सहज एक रस स्थिति बनाती है। एकाग्रता की शक्ति सदा सर्वप्रति एक ही कल्याण की वृत्ति सहज बनाती है। और एकाग्रता की शक्ति सदा सर्वप्रति एक ही कल्याण की वृत्ति सहज बनाती है। सर्वप्रति भाई भाई की दृष्टि स्वतः बना देती है। और एकाग्रता की शक्ति हर आत्मा के संबंध में स्नेह सम्मान सोमान के कर्म सहज बनाता है। तो अभी क्या करना है, क्या टेंशन लेना है? एकाग्रता स्थित होते हो, अनुभवी करते हो, लेकिन एकाग्र अनुभवी नहीं होते। कभी श्रेष्ठ अनुभव में, कभी मध्यम, कभी साधन, तीनों में चक्कर लगाते रहते हो। इतना समर्थ बनो जो मन और बुद्धि सदा आपके ऑर्डर अनुसार चले। स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल में नहीं आए, मन मालिक को परवश नहीं बनाए। और परवश आत्मा की निशानी है, उस आत्मा को उतना समय सुख चैन आनंद की अनुभूति चाहते हुए भी नहीं होगी। ब्राह्मण आत्मा कभी किसी के परवश नहीं हो सकती, अपने कमजोर स्वभाव और संस्कार के वश भी नहीं। वास्तव में स्वभाव शब्द का अर्थ है स्व का भाव। स्व का भाव तो अच्छा होता है, खराब नहीं होता है। स्व कहने से क्या याद आता है? आत्मिक स्वरूप याद आता है ना? तो स्वभाव अर्थात स्वप्रति व सर्वप्रति आत्मिक भाव हो। जब भी कमजोरी बस सोचते हो कि मेरा स्वभाव और मेरा संस्कार ही ऐसा है, क्या करूं, है ही ऐसा, तो ये कौन सी आत्मा बोलती है? शब्द व संकल्प परवश आत्मा के हैं, तो जब भी ये संकल्प आए कि स्वभाव ऐसा है, तो श्रेष्ठ अर्थ में टिक जाओ। और संस्कार सामने आए कि मेरा संस्कार, तो सोचो क्या मुझ विशेष आत्मा के ये संस्कार है? जिसको मेरा संस्कार कह रहे हो, मेरा कहते हो, तो कमजोर संस्कार भी मेरा पन के कारण छोड़ते नहीं है। क्योंकि ये नियम है, जहाँ मेरापन होता है वहाँ अपनापन होता है, और जहाँ अपनापन होता है वहाँ अधिकार होता है। तो कमजोर संस्कार को मेरा बना लिया तो वो अपना अधिकार छोड़ते नहीं है। इसलिए परवश होकर बाप के आगे अर्जी डालते रहते हो कि छोड़ाओ छोड़ाओ। संस्कार शब्द याद करो कि अनादि संस्कार आदि संस्कार ही मेरा संस्कार है, ये माया के संस्कार है, मेरे नहीं। तो एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति के सीट पर सेट हो जाओ। योग में भी बैठते हो, बैठते तो सभी रुचि से हैं, लेकिन जितना समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहते हो उतना समय एकाग्र स्थिति रहे उसकी आवश्यकता है। तो क्या करना है, किस बात को अंडरलाइन करेंगे? एकाग्रता, एकाग्रता में दृढ़ता होती है, और जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता गले का हार है। तो बाबा कहता है कि इस दुनिया में भी जैसे बाबा हम ब्राह्मण बच्चों के बारे में भी और दुनिया में भी एकाग्रता की शक्ति बहुत महत्व की है, क्योंकि साइंस वाले जब कोई भी खोज करते हैं तो उसको भी साइलेंस की शक्ति चाहिए। और यहाँ बच्चों को बाबा ने कहा है कि अगर मन को इतनी शक्तियां हैं और मन इतनी शक्तियां हैं कि जिससे विश्व पर राज्य कर सकता है, तो भगवान ने श्री बाबा ने हमको दो शक्तियां ऐसी दी है, मन और बुद्धि। और सारे सारे कल्प में मन और बुद्धि का ही खेल है। बाबा ने कई बार कहा है कि अगर आपके पास कोई युद्ध के साधन नहीं है, ऐसे बड़े बड़े राजा जब युद्ध करते हैं तो बड़े बड़े साधन चाहिए, लेकिन आपके पास क्या है, मन और बुद्धि से पूरा राज्य विश्व का मालिक बन सकते हो। तो बाबा कहता है कि उसके लिए एकाग्रता चाहिए, और एकाग्रता की शक्ति हम कहते हैं कि हम रोज रोज योग करते हैं, हमारे में शक्ति आ जाती है, लेकिन बहुत मेहनत की बात है। ऐसी सारी इतने स्ट्रेसर जन्म हमने जो भी कर्म किया है, सब किताब हमारा बना है, उससे हम एक जल्दी से जल्दी हमारी एकाग्रता की शक्ति आ जाए ऐसा हो नहीं सकता है। तो बाबा कहता है बहुत मेहनत की जरूरत है, और इससे फायदा तो बहुत है, फायदा तो इतने लिखे हैं इसमें, लेकिन हमको कैसा अनुभव होता है, हम एकाग्र कितने समय रहते हैं। तो इसलिए कभी कभी क्या होता है, हम परवश हो जाते हैं। कैसे परवश हो जाते हैं, क्योंकि बाबा ने जब हमको यहाँ भेजा था, हमारी बैटरी चार्ज करके भेजा था यहाँ, तभी हमारी बैटरी चार्ज होने के कारण सत्य में हम मालिक थे। जैसे बाबा मालिक है वैसे हम भी प्रकृति के मालिक थे, हमारी कर्म इंद्रियों के मालिक थे। और जब मालिक थे तो मालिकपना तो और अच्छा ही रहता है, लेकिन इतने जन्मों के बाद जब हमारी बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगी, तो फिर हम धीरे धीरे देह अभिमान्य होने के बाद परवश होने लगे। तो परवश जब होने लगे, तो परवश होने के बाद क्या हुआ कि क्योंकि हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, और परवश होने के बाद बाबा ने जो हमको सुख दिया था, चैन दिया था, वो हमारे चैन और सुख हम साधनों में ढूंढने लगे। साधन तो अल्पकाल के हैं, उसमें ढूंढते ढूंढते उसके परवश हो गए, और इतने परवश हो गए कि इतने साधन है, कितने साधन हमारे पास आते रहते हैं, गाड़ियां हैं, मोटर है, सब कुछ है, लेकिन सच्चा सुख सच्चा चैन में नहीं मिलता है, क्योंकि हम परवश हो गए हैं। किसके परवश हो गए, व्यक्तियों के परवश हो गए हैं, वस्तुओं के परवश हो गए, साधनों के परवश हो गए। तो बाबा कहते हैं कि परवश आत्मा को कभी भी सुख चैन नहीं मिल सकता है, लेकिन बाबा चाहता है कि हमारी स्थिति इतनी ऊंची पावरफुल हो जाए, इतने जन्मों में हमने जो कुछ गुमाया है, लेकिन अभी बाबा मिला है, सर्व शक्तिवान साथी मिला है, और बाबा कहते तो मेरे को यूज करो, हर कर्म में यूज करो। तो बाबा हमें ऐसा सर्व शक्तिवान साथी मिला है जिसके साथ से हम अपना ये बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी, लेकिन हो सकता है। बाबा कहता है कि जब भी हम परवश हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा स्वभाव ऐसा है, हमारे संस्कार ऐसे हैं, कभी कभी इतने जन्मों की आदत के कारण हमारा स्वभाव बहुत ही कड़ा हो जाता है। लेकिन बाबा कहते स्वभाव माना क्या, स्वभाव माना स्व का भाव माना आत्मा। जब आत्मा का ओरिजिनल जो संस्कार है, ओरिजिनल आत्मा के गुण है, वो तो पॉजिटिव है, प्रेम है, सुख है, शांति है, आनंद है, वो उसका ओरिजिनल स्वभाव है। तो वो जब हम याद करते हैं कि हम जब परम धाम में रहते थे तभी भी इतने समय तक हमारी ओरिजिनल क्वालिटी थी, हमारी बैटरी चार्ज थी, और जब हम सत्ययुग और त्रेता में आए, इतने जन्म हम रहे, तो भी हमारी जो स्थिति थी बहुत ही ऊंची थी, हमारी आत्मिक स्थिति थी। लेकिन थोड़े समय में द्वापर में भी इतने गिरे हुए नहीं थे, लेकिन इस कलयुग में जल्दी जल्दी हमारी स्थिति खराब हो गई है। तो बाबा कहते स्वभाव को जब याद करते हो तो अपना आत्मिक स्वरूप को याद करो कि हमारी आत्मा कितनी पावरफुल थी। तो हम आत्मा है, और सभी हमें जिसके भी साथ रहते हैं सभी को आत्मा समझो। तो आत्मिक स्थिति को का अभ्यास जब हम करेंगे तो हमारा उसको हम याद करेंगे तो हमारी पावरफुल स्थिति होगी। और दूसरा कि संस्कार, संस्कार भी हमारे यहाँ आते आते लोगों के प्रभाव में आ गए हैं, इतने प्रभाव में आ गए हैं, किसी के अच्छे प्रभाव में, किसके बुरे प्रभाव में, तो इस प्रभाव में आते आते हमारी आत्मा की जो बैटरी है वो सब डिस्चार्ज होने आई है। तो बाबा कहते जब संस्कार अगर याद आता है तो संस्कार हम जब यहाँ हमारे आदि संस्कार, शुरुआत के संस्कार, आत्मा के संस्कार तो अच्छे ही है, लेकिन जब सतयुग में हम आए थे, त्रेता में जब आए थे, तभी हमारे संस्कार कैसे थे, देवी देवताओं के संस्कार थे, हमारे संस्कार बहुत ऊंचे थे। तो हम वो अगर याद करते हैं कि ये जो हमको पापर से, वो हमारे संस्कार नहीं, वो तो रावण के संस्कार है। जब रावण के संस्कार समझेंगे, पराई संस्कार समझेंगे, तो पराई संस्कार समझने से हमारी बुद्धि उसमें जाएगी नहीं, लेकिन इस संस्कार को हमने अपना संस्कार समझ लिया है। तो अपना संस्कार जब समझते हैं तो बाबा कहते हैं जब अपना है वो अधिकार होता है, फिर वो हमारे में बैठ जाते हैं। तो इसलिए जब स्वभाव याद आता है तो अपनी आत्मिक स्थिति को याद करना है, और संस्कार याद आता है तो हमें वो आदि अनादि संस्कार, जब हम परम पूज्य थे, कैसे थे, वो याद करना है। अभी हमारी एकाग्रता की शक्ति बढ़े उसके लिए मैं दो चार बातें कहूँ, तो लेकिन पॉइंट में लिख के लाई हूँ 6-7 पॉइंट, वो बताऊ?
बता।
उसमें हमारी एकाग्रता, हम समझते हैं कि हमारी एकाग्रता बाबा की रोज रोज मुरली सुनेंगे तो एकाग्रता आ जाएगी, ऐसा नहीं, लेकिन हमें उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले है ना, तो विचारों पर हमारी एकाग्रता नहीं होती है। सारे दिन में हम क्या करते हैं, जो भी सुनते हैं, जो भी सबके संपर्क में आते हैं, तो हमारे विचार थोड़े प्रभावित हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा सबसे पहले जब हम अमृत वेले के बाद जब मुरली सुनते हैं, तो कई बार हमने देखा है कि मुरली सुनते हैं तो क्या होता है कि मुरली सुनते समय कई लोग तो है ना पूरे दिन की दिनचर्या इसमें लिखते हैं कि हमें ऑफिस में जाके क्या करना है, अभी हमें बाहर निकल के क्या करना, प्रोग्राम बनाएंगे, अपना एजेंडा तैयार करेंगे। लेकिन उसी समय जो जब ज्ञान सुनते हैं, क्लास सुनते हैं, या जब मुरली सुनते हैं, तो मुरली में बाबा जो जो कह रहा है उसके ऊपर अगर हम अटेंशन रखते हैं, जैसे बाबा ने कहा था मुरली सुनने के लिए विधि बताई थी कि बाबा जहां जहां हमको जो जो बोलते हैं, बाबा परम धाम कहते हैं तो हमारी बुद्धि परम धाम में जानी चाहिए, तो उसी रीति से अगर हम चित्र बना करके मुरली को सुनते हैं तो हमारी बुद्धि में फिट हो जाती है। और दूसरा है कि मुरली सुनते समय या क्लास सुनते समय या कोई किसी का भी हम क्लास सुनते हैं तो हमारी बुद्धि है ना तो उसमें ही रहनी चाहिए। उसी समय हम जिसको बेमौके के विचार नहीं करना चाहिए, या तो कोई सारे दिन के विचार नहीं करना चाहिए, सब उस समय करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम उसी समय कहीं अमेरिका जाकर के विवाहिश आ जाते हैं, लंदन जाकर के बच्चे के पास जाकर के आते हैं हमें, तो ऐसे हमारी बुद्धि थोड़ी थोड़ी मतलब भटकने लगती है, तो फिर हमारी बुद्धि में वो ज्ञान ठहरता नहीं है। तो जब क्लास सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, तो उसकी विधि जो बाबा ने बताई है उस विधि से उतनी एक ही घंटा सुनना, इसलिए बाबा कहते हैं एक ही घंटा है। देखिए एक ही घंटा हम सहज समझ लेते हैं कि एक घंटे में क्या है, वो इधर उधर गए तो क्या, लेकिन 5 मिनट ही हमारी बुद्धि फिर रहती है। तो हमें अटेंशन रहे कि बाबा एक ही समय में हमको 63 जन्मों का विकर्म विनाश करने का है उसके लिए, और जमा करने के लिए हमारे पास थोड़ा सा ही टाइम है, तो जो जिस समय जो करना है उस समय उसी अनुसार करेंगे तो हमारी ताकत आएगी। दूसरा है कि बाबा ने कहा है कि देह और देह के संबंधों को भूल जाओ। बाबा रोज हमको याद कराता है कि देही अभिमन स्थिति रहनी चाहिए, क्योंकि देही अभिमन स्थिति में इतनी ताकत है। बाबा कहते हैं कि देही अभिमान स्थिति कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा, कोई मुरली में बाबा ने ऐसा याद नहीं किया, क्योंकि तुम आत्मा हो, आत्मा रोज ही याद करता है और देही अभिमान स्थिति याद कराता है। और बाबा की पहली श्रीमत है कि देह और देह के संबंध को भूल जाओ, पहली श्रीमत। अगर हम इस पहली श्रीमत को अगर बराबर फॉलो करते हैं तो इस पहली श्रीमत से ही संपूर्ण बन सकते हैं। तो बाबा ने कहा है कि संबंध, बाबा ने कहा कि दुनिया में कितने संबंध, मामा काका चाचा कितने संबंध है, सतयुग में हमको थोड़े से संबंध है, है ना। लेकिन संगम युग में बाबा ने हमको एक ही सबन दिया है। बाबा ने कहा है कि मैं पिता हूँ, मैं और आप सभी बच्चे हैं, सब भाई भाई हैं, और वो पिता है, इतने सबन में। और फिर ब्रह्मा बाप के बच्चे हैं तो वो मात पिता है और हम बच्चे हैं, तो थोड़ा सा ही सबन है। इसलिए हमारा जो भी सबन, जिससे भी सबन होता है, यहाँ क्या करते हैं, वहाँ हमारे सबन होते हैं, यहाँ के थोड़े और रिलेशन बढ़ा देते हैं, यहाँ से वो चाहे, यहाँ से वो चाहे, तो सबन हमारा बढ़ जाता है, बढ़ बढ़ होती है, गिफ्ट देते रहते हैं, सबन बढ़ता जाता है। तो बहुत सारे ब्रह्मा भोजन करते रहते हैं तो बड़े नए नए लोग मिलते हैं, हमारे सबन बढ़ते जाते हैं।
ये तो परीक्षा है
तो सब मनाना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन बाबा ने कहा कि संबंध मेरे साथ रखो, सब संबंध, माँ बाप भाई सखा जो भी, और जो भी कहने उसको कहो, मतलब कि सब संबंध अगर हमारे उस एक के साथ होंगे ना। तो बाबा ने कई बार मुरली में कहा है, क्या कहा है कि अनेकों में जाना तो मुश्किल है, लेकिन एक में सब संबंध मेरे साथ निभाओ तो क्या होगा, मुश्किल नहीं होगा। इसलिए हर संबंध बाबा के साथ रहे। लोगों के साथ संबंध ऊपर ऊपर का रखो, लेकिन मेरे साथ अंदर का रखो। और तीसरा है कि इच्छा हो। बाबा कहते हैं कि हमारी इच्छाएं ऐसी है ना, कौन सी इच्छाएं होती है ब्राह्मण बनने के बाद, तो कि हमारी इच्छा मान शान मिले, हमको स्टेज पर जाने मिले, सब हमको देखे, वो हमारी इच्छाएं होती है। बहुत और भी इच्छाएं होती है कि संसार की वो लोगों को देखेंगे, महारथी भाई बहनों को देखेंगे, उनको इतना अच्छा कमरा है, हम उनके पास इतनी गाड़ियां हैं, उनका कमरा में सब कुछ है, इसको इतना फर्नीचर मिला है, हमारी बुद्धि उसमें घूम जाती। क्यों? क्योंकि हम त्याग करके आए हैं, फिर भी हम भूल जाते हैं। हमने यहाँ देखा है कि कई लोग हैं, इतना त्याग किया है जिंदगी में, इतना त्याग किया है, सारा घर बार सब कुछ बाबा को दे दिया, लेकिन यहाँ आने के बाद क्या है कि कोई को कुछ मिलता है, कोई को कुछ नहीं मिलता है, तो उसका दिल है ना थोड़ा विदीर्ण हो जाता है कि उनको स्वेटर मिला मुझे नहीं मिला। तो इतने बड़ा त्याग करने के बाद भी भूल जाते हैं कि हम यहाँ आए हैं तो हमारे को एक चीज मिली नहीं मिली तो क्या है। इच्छाएं, अब बाबा कहते इच्छाएं और आशाएं बहुत है हमारी, उसको कम कर दो। तो इच्छाओं की अगर ऐसा है कि इच्छा नहीं होती वो तो मूर्खा होता है, इच्छा तो करनी चाहिए ना। मूर्ति को इच्छा नहीं होती, उसको जला जाता है, जलाया जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि हमारी इच्छा श्रेष्ठ होनी चाहिए, बाबा जो चाहते हैं वो हमारी इच्छा होनी चाहिए, कि हमारा जीवन अच्छा बन जाए, हमको मुक्ति और जीवन मुक्ति की और बड़े ऐसा रास्ता, तो वो हमारी इच्छा होनी चाहिए और श्रेष्ठ इच्छाएं होनी चाहिए। तो जैसे श्रेष्ठ इच्छा में एक बात बताती हूँ, ऐसा कहते हैं कि सिकंदर जो है ना, वो लोगों को बहुत साम्राज्य जीतने के बाद वो भारत में हमला करने के लिए आया था, तो उसने अपने गुरु को जाकर के पूछा था कि आपके लिए क्या लाऊं, तो उसने बोला भारत में से एक योगी को लेके आना। तो बोला भारत में एक योगी को लेके आना, तो कहते हाँ, तो कहते वो तो सहज बात है, वो समझा सहज बात है, तो वो आया होगा। तो उसने इन लोगों को पूछा कैसा यहाँ कोई योगी मिल सकता है, बोला एक जगह पे उसने बोला कि, लेकिन ऐसा तो उसने ढूंढ लिया और योगी के पास गए, वो तो जंगल में बैठा था, उसके पास एक ही वस्त्र पहना हुआ था, तो उसके पास गया और कहा कि आप चलो हमारे पास। तो उसने बोला मुझे नहीं आना है। उस बहुत प्रलोभन दिया, हमको ये तुमको ये देंगे ये देंगे ये देंगे, हाथी पर चढ़ाएंगे, घोड़े पर चढ़ाएंगे, इतना माल सामान लेंगे, महल मालिक बना देंगे। ओके, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो उसको अंदर से वंदन लगा कि मैं इतना हमने मेहनत करके लोगों को लूट, कितना घर बार छोड़ करके इतना मेहनत करके इतना लूटा, और वो तो कुछ उसको नहीं चाहिए, कैसा है ये आदमी, तो उसके मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब कि उसको कुछ नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, उसको क्या प्राप्ति हुई है। तो वैसे अर्जुन और दुर्योधन की भी बात है ना, तो कहते हैं कि अर्जुन को बाबा में भगवान मिल गया तो उसको मतलब कुछ नहीं चाहिए, और जीत तो उसकी ही हुई। तो वो सारी बातें किसके लिए है, हमारे लिए। बाबा कहते हैं अभी मैं आया हूँ और आप, मैं जब आया हूँ तो आप योग में मांगते हो कि बाबा उसको गाड़ी मुझे भी दे दो, उसके पास थोड़ा ये है मेरे को भी दे दो, बाबा मेरे को भी स्टेज पर चढ़ने को मिल जाए। तो ये सब बातें बाबा कहते हैं, उससे क्या होता है कि हमारी इच्छाएं कभी पूरी होती नहीं है। एक इच्छाएं पूरी हो जाएगी, दूसरी कड़ी हो जाएगी, दूसरी पूरी हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी, इच्छा कभी बेलगम घोड़ा जैसे है। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसी इच्छा रखो, अभी भगवान मिला है उसका हमारे पर कृपा रहे, उसका हाथ हमारे पर रहे, हमारी सदा रक्षा उसकी सारा करते रहे, तो क्या होंगे ये सारी फीलिंग्स जो होंगी ना कि बाबा ही हमारा है और सदा उसका हाथ अगर हमारे सिर पर रहेगा, उसकी कृपा हमारे सिर हमारे पर रहेगी, वो हमारी सदा रक्षा करेगा, तो दुनिया में किसी का भी जरूरत नहीं है, इतना बड़ा मालिक है। तो कहने का मतलब कि यहाँ जो भी सारी चीजें हैं बाबा कहते हैं कि ये सारी चीजें क्या है, सारी चीजें क्या विनाशी है, वो आंख भी नहीं रहेगी, बाबा ने बोला देखने की आंख भी नहीं रहेगी, तो ये सारी विनाशी चीजें हैं उससे उपराम हो जा, उपराम। तो उपराम होने के लिए बाबा ने हमें कितनी बातें बताई है, तो इच्छाएं कम कर दो, और जब कम कर देंगे और बाबा के ज्ञान को समझेंगे तभी उपराम वृत्ति आएगी। तो उपराम होना है किससे, उपराम होना है कि बाबा कहते हैं कि अभी घर जाने का समय आ गया है, जो भी चीज दिखाई देती है ना थोड़े समय के लिए है, और जब व्यक्ति मरने वाला होता है तो डॉक्टर को पता होगा वो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि मरने वाला नहीं लेकिन दीपक उसका बुझ जाता है। तो दुनिया जो है खत्म होने वाली है, उसका पाव बहुत आएगा, आपको लगेगा ये लूं ये मोबाइल लूं कि ये मोबाइल लूं, अभी नया मोबाइल आया यही ले लेते हैं, इसमें मूली भी आएगी, क्लास भी आएगा, ये भी आएगा, ये तो
माया
है। लेना चाहिए, साधन है तो उपयोग करना चाहिए, लेकिन फिर बाबा ने बोला कि इस ज्ञान में बहुत इम्पोर्टेंट बातें निश्चय की, भगवान आया है हमें जो भी सुनाता सत्य है, और उसके पर अगर निश्चय हमारा हो जाएगा तो हमारा पुरुषार्थ चालू हो जाएगा, अगर निश्चय नहीं है तो पता नहीं बाबा आया है नहीं आया होगा, तो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं अभी इतने समय हुआ बिना सुना नहीं, तो हमारी बुद्धि को भी कर लेंगे। एक है ना हमारी एक बहन है, वो कितने सालों से चलती है, तो हमारी दूसरी एक बहन है उसको पूछती है कि ये हमारे पत्र हमारे पास पत्र आते हैं ये कौरव गवर्नमेंट का, तो ये सच्चा है क्या, तो कहती है कि देखो हमने जहाँ मंजिल हमारी मंजिल है बाबा की उसमें ही हमने पांव रखा है, वहां से हटना नहीं है, मतलब क्यों जो भी हो हमने जहाँ पांव रखा है वो हटना नहीं है। तो कहने का मतलब कि हमने जो राह चुना है वो राह से कभी हटना नहीं चाहिए, जो भी हो मुश्किल जो भी आ जाए, लेकिन हमारा निश्चय होगा ना तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। लेकिन निश्चय हिलाने वाली बहुत बातें आती है, इतनी बातें आएगी, परीक्षा भी इतनी आएगी, लेकिन बाबा कहते हैं फिर भी मैं आपकी नाव को, नाव तो हिलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, इस निश्चय रखना चाहिए। और एकाग्रता के लिए एक बात बाबा बहुत बार बोलता है कि आप फुल स्टॉप लगा दो, फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप किस में लगाना है, जो बहुत चलता है ना विचार उसमें, कभी कभी वाणी जो चलती है बहुत उसमें, और कर्म भी इधर उधर कर देते हैं, तो बाबा कहते हैं कि बाबा ने हमको तीन तीन पॉइंट दिया है ना, और लेकिन बाबा कहते चौथा है विराम करो अपने को, क्यों, क्योंकि जहां बोलना है वहां, जहां सोचना है वहां, उसके बाद हमारा मतलब अल्प विराम होना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति लिखता रहे लिखता रहे लिखता रहे उसमें फुल स्टॉप ही ना हो तो कैसा लगता है। तो हमारे जीवन में हमारे बाबा ने कहा है कि जहां सोचना है जो सोचना है जो करना है उतना ही कर, फुल स्टॉप लगाना, क्योंकि फुल स्टॉप कहाँ लगाना होता है, व्यर्थ बातें में बह जाते हैं, नकेले जाएंगे समझेंगे कि अभी हम ना तो व्यर्थ बातें नहीं करेंगे, पता नहीं कब चालू हो जाती है, ऐसा हो जाता है। तो ये सब प्रैक्टिकल बातें जो होती है, कहती अभी दो दिन पहले क्या हुआ कि मेरा मैंने समझा मेरी स्थिति थोड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन क्या हुआ पता है, पर्स मेरा है ना तो गुम हो गया, तो गुम हो गया ना, तो मैंने बोला अरे रे मेरे को तो ये क्लास में बोलना भी है, मैं तो सब भूल जाऊंगी, बोला जो प्रैक्टिकल। तो फिर मैंने बोला एक पर्स मिलता नहीं, उसमें तो सब कुछ है, मेरा आइडेंटिटी कार्ड सब कुछ है, मिलता नहीं, जरूरी बातें थी इसमें, इसलिए थोड़ा सब डूब चला। फिर किसी ने बोला अरे छोड़ दो बाबा के ऊपर ठीक हो जाएगा, मैंने बोला अच्छा, मैं छोड़ दिया, और मैंने बोला मैं सोने गई ना, तो एक बहन आई मुझे बोला आपका पर्स मिल गया। तो कहने का मतलब कि इसमें छोटी सी बात है, इसमें कुछ है नहीं, फिर भी हमारी बुद्धि इतनी हिल गई मेरी, कहने का मतलब। तो ये समय कैसा कैसा होगा, तो कितना पुरुषार्थ की जरूरत है, बहुत पुरुषार्थ की जरूरत है। तो हमारी एकाग्रता कोई इतनी सरल नहीं है कि हाँ हो गई इसलिए
व्रत रखना ही है।
हाँ, फिर बाबा ने कहा था कि हमारा जो एकाग्रता क्यों नहीं होती पता है, रोज सुबह से रात शाम तक हमारे पास जो भी होते हैं ना उसकी थोड़ी थोड़ी उनके साथ हमारा मन मोटाव थोड़ा रहता है, थोड़ा तो हमारी एकाग्रता नहीं रहती है। अब कुछ हो गया ना तो मन में वो संकट चलता है। तो हमारी बाबा ने कहा सबसे प्रीत रहे, कैसे प्रीत रहेगी ना, कोई हमको जैसे वैसे बोल देता है तो उस समय हम हिल जाते हैं। तो कहने वाले प्रैक्टिस हमारे को होनी चाहिए कि आज कुछ भी हो जाए हमें डिस्टर्ब नहीं होना है। तो प्रीत सबसे रहेगी ना तो डिस्टर्ब नहीं होगा, कोई कैसा भी बोलता लेकिन वो क्या से बात करेंगे ना तो उसका जो मन है वो भी मौन हो जाएगा। तो सबसे प्रीत होनी चाहिए। और दूसरा है कि सबको मान और सम्मान, सबको मान चाहिए, सम्मान चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि छोटा बच्चा है ना उसको भी बहुत प्यार से, लेकिन जैसा वैसा बोलोगे पानी लाओ तो नहीं लाएगा वो, आप उसको मान से बोलना पड़ेगा। तो सम्मान सबको चाहिए, लेकिन बाबा ने हमको बहुत सम्मान दिए हैं, तो सम्मान को याद करना है। और हमें हमारे संपर्क में जो भी आते हैं चाहे कैसे भी लोग हैं लेकिन बाबा के बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा मेरे बच्चे सब राजा बच्चे साहेबजादे हैं, इसलिए हमें सबको मान लेना है, सम्मान लेना है, क्योंकि इतने सारे जन्मों की हम सभी साथी है, एक जन्म के नहीं है, इतने जन्मों में किसी ने हमें कब कहाँ मदद की होंगी, कहाँ मदद नहीं की होंगी, कहाँ हमें बहुत ही उपकार किया होगा। अभी तो साधारण रूप सब बैठे हैं और किसी ने कुछ किया और हमने उसको बहुत कुछ बोल दिया, हम भूल गए कि उसने हमारे पे बहुत उपकार किए हैं। इसलिए हमें सबसे सबके साथ हमारे सम्मान से मान से रहना चाहिए, उसमें अभिमान नहीं आना चाहिए कि अरे रे मैं बहुत कुछ पढ़ा हूँ या मैंने बहुत कुछ इतने समय से ज्ञान में चलते हैं और कुछ नहीं, ऐसा अभिमान नहीं आना चाहिए। इसलिए बाबा कहते सम्मान में रहना है। और दूसरी है कि हमारी जो एकाग्र स्थिति रखने के लिए बाबा ने हमें अब तक जब से हम बाबा के बने हैं तब से बाबा ने हमें जो सुख दिया है, तो जितनी भी स्मृतियां हैं ना सुख की उसको याद करना है, क्योंकि हमारे जीवन की रेखाएं इतनी सीधी तो नहीं चलती होंगी ना, कभी कभी बहुत दर्द भी हुआ होगा, लेकिन सुख की बातें हैं। बाबा हमें पहली बार मिले तभी हमको कितना सुख मिला, बाबा ने हमें जो जो बातें बताई उसमें सुख की बातें, दुख की बातें नहीं सुख की बातें याद करेंगे ना तो हमारी एकाग्रता बढ़ती जाएगी। तो ये थोड़ी थोड़ी बातें हैं और याद रखने जैसी बातें हैं। तो अगर हम अपने जीवन में सुबह से रात तक जब थोड़ा थोड़ा ध्यान रखते हैं, अटेंशन रखते हैं, तो हमारी एकाग्रता बढ़ेगी। तो एकाग्रता बढ़ने के लिए जो ज्ञान बाबा दे रहा है और जो हम थोड़ा अटेंशन रखेंगे तो हम सब बाबा जो चाहता है वो बन जाएंगे। लेकिन मुझे क्लास का एक बहुत ही फायदा हुआ है, बताऊं, मैं तो कभी विचार सकल मंथन करती नहीं थी और कल्याण में बैठी ना सुशील भाई मुझे कहते क्या लिखते हैं मैं कल तो मुझे इतनी मतलब खुशी हुई कि देखो वो तो सुनाते थे ना, हम कभी सुनते हमारी बुद्धि भी इधर उधर जाती थी, लेकिन आज उसने बोला कि तो बहुत कुछ याद रहता था। तो मतलब कि सचिन भाई थैंक्स आपका, आपने प्रोग्राम बनाया हमारा, हमारी चलती कला बनाने का, तो थैंक्स बहुत।
नीचे का कुछ बताने वाले थे, मीटिंग का कुछ बताने वाले थे,
मीटिंग का कुछ बताने वाले
थे। हाँ, जब मीटिंग हमारी हुई ना उसमें नीरज भाई तो था नहीं, दादी रतन दादी की एक विशेषता थी तो हर मीटिंग में टाइम टाइम आ जाती थी, और रमेश भाई को डायलिसिस होता था लेकिन वो इतना टाइम पे आ जाते थे। और उसमें क्या था कि इस बारी जो बताया है कि योग के ऊपर अटेंशन है कि हमारा योग इंटरनेशनल नेशनल जो भी योग है उसके लिए कुछ थीम बनाया है। और एक दूसरी बात बताई थी कि बाबा को प्रत्यक्ष करना है उसके पहले ब्रह्मा बाबा को भी प्रत्यक्ष करना है। तो कहीं उन्होंने कहा कि वहाँ तपोवन में है ना तो ऐसे जगह है वहाँ बहुत बड़ी आर्ट गैलरी बनाई और बाबा की जीवन कहानी बनाए, तो वहाँ ये चार धाम है वो भी वहाँ मतलब की रखेंगे। तो लेकिन ब्रिजमोहन भाई ने कहा कि देखो ये चार धाम जहाँ है पांडव भवन में वो चार धाम है, वहां तो कोई कैसा भी बना हुआ लेकिन वहां जब तक नहीं जाते ना तब तक लोगों की मतलब की अंदर लगता नहीं कि हम मधुबन में है, इसलिए वो चार धाम है उसको ठीक कर दो। मतलब वो अच्छी रीति से बनाओ कि लोग हैं ना, तो अभी जो तभी तो देखो वहां आसपास पत्थर भी कैसे हो गए, वो सब कुछ उसको ठीक करना चाहिए, वो बताया। और दूसरा बताया कि जितनी भी बहनें आई थी ना, 1700 बहनें थी मुझे लगता है, तो सभी जोन वाइज और अपने सेंटर वाइज विंग्स वाइज उन लोगों ने जो सारे एक साल में सेवा की थी उसका पावर पॉइंट बता रहे थे, पावर पॉइंट में क्या क्या सेवा की वो सब बताया था। लेकिन सबका अटेंशन स्व के ऊपर था इस बारे की स्व के ऊपर क्या करना है, क्योंकि स्व के ऊपर जब तक हम नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो स्व के ऊपर अटेंशन के कारण योग का प्रोग्राम, और इस बारी जो ट्रेनिंग होंगी सबकी ट्रेनिंग होंगी, कुमारियों की ट्रेनिंग होंगी उसके साथ टीचरों की ट्रेनिंग, लेकिन वो उस ट्रेनिंग का नाम है रूहानी आनंदमय यात्रा, रूहानी आनंदमय यात्रा। तो किसी ने बोला हम तो ट्रेनिंग नहीं करेंगे, हम तो बड़े हो गए, ट्रेनिंग हमको क्या करना है, तो कहते नहीं ये अलग नाम होगा रूहानी आनंदमय यात्रा ऐसा। तो ये शॉर्ट में सुनाया आपको। ओम शांति।
काफिरता की शक्ति के बारे में बाबा कह रहे थे, मुझे अपना एक शॉर्ट एक जस्ट अभी पहले सुना रहे थे, एक अनुभव याद आया कि जब कुंज दादी बहुत बीमार थे 2011 में और अहमदाबाद में एडमिट थे, स्टर्लिंग में लगभग 1.5 महीने से एडमिट थे और बहुत ज्यादा उनको पेट में दर्द होते रहता था। तो बनारसी भाई ने मुझे याद है स्टेज पर बाबादादा से पूछा था क्या किया जाए, तो बाबा ने कहा था कि कहीं किसी और को दिखा। तो वो जो कहा बाबा ने उस समय मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे लिए कहा है, इतना मुझे एकदम पहली बार मतलब संपूर्ण स्पष्ट रीति अनुभव हुआ कि ये जो कहा है मेरे लिए कहा हुआ है। तो उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में डॉक्टर अशोक मेहता मिले तो उन्होंने कहा कि दादी नीचे आए हैं कुछ दादी और बहुत सीवियर पेन चल रहा है उसको, आप उस पेपर जाके देखो। तो मैं जाके देखा तो देखा दादी लिटरली मतलब इतनी बहुत मतलब बहुत ही सीवियर दर्द था वो, और वो पेट में दर्द था और लगभग 1.5 महीना दादी स्टर्लिंग हॉस्पिटल में थे और वहां के रिपोर्ट्स मैंने देखा तो ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट डे एक सोनोग्राफी हुई थी, पेट का सिटी स्कैन से लेके तो सब कुछ हो चुका था, पर कारण क्या है वो पता ही नहीं चला था। मतलब इतना सब करने के बाद लगभग 24 सोनोग्राफी थी 1.5 महीने में और सिटी स्कैन था और भी दो बहुत सारी जांच थी। तो मैंने वहां के जो डॉक्टर है इंटेंसिविस्ट डॉक्टर दुमरा उनसे भी बात किया फोन पर, तो उन्होंने कहा कि हमने तो जो करना है कर लिया, तुम देखो कुछ कर सकते हो। तो मैंने सोचा कि दादी को ऊपर लेके आए, तो फिर दादी को इधर लेके आए ऊपर और फिर सारी फाइल मैंने स्टडी किया और उसके बाद में मुझे याद है मैं एक दिन इधर बैठा था शांति स्तंभ में, मतलब योग नहीं परंतु वो क्या है, ये क्या है दर्द, इसके बारे में मैं सोच रहा था और सोचते सोचते मतलब इतनी बुद्धि एकाग्र हो गई एक घंटे के लिए कि उसमें मतलब सारी जो फाइल है जो सारे रिपोर्ट है इतना उसमें बुद्धि एकाग्र हुई कि ये है ये है ये है ये है ये है ऐसा है ऐसा है ऐसा है ये हो सकता है वो हो सकता है, इतना 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 उसमें फोकस हो गया कि तुरंत एकदम अचानक मेरे मन में एक विचार आया कि ये जो दर्द है कहीं पेट का नहीं है, कुछ और दर्द है, ये शायद कहीं और से आ रहा है, जैसे कि कभी कभी रेफर्ड पेन जिसको कहते हैं बैक नर्व रिलेटेड पेन, तो हो सकता है शायद कोई एक फ्रैक्चर है पीछे स्पाइन में। तो हमने एक फिर दूसरे दिन दादी को यहां से मेहसाना भेजा, वो दर्द के साथ बहुत सारे इंजेक्शन देके क्योंकि वो दर्द ऐसा था कंटिन्यूस पेन था। तो मैंने ये बात फिर वहां पे बात किया वो डॉक्टर से कि क्या ये फ्रैक्चर हो सकता है, बोले मुझे नहीं लगता ये फ्रैक्चर होगा, वो जो मेन डॉक्टर थे, क्योंकि हमने सारी जांच कर ली है और फ्रैक्चर का तो लग नहीं रहा है, कुछ सिम्टम्स है नहीं। तो उसके बाद में भी मुझे लगा कि नहीं ये फ्रैक्चर ही होगा। तो फिर यहां लाने के बाद में तीसरे दिन हमने दादी को मेहसाना भेजा तो उसमें फिर वो फ्रैक्चर निकला एंड इट वॉज लाइक कॉम्प्रेशन हो रहा था वन नर्व का, और वही पेन इधर आ रहा था। तो ये जो पेन हो रहा था ये पेट का पेन नहीं था, परंतु वो पीछे से आकर और वो इतना सीवियर था कि उसको देखे नहीं जा रहा था। तो फिर हमने उस रीति से उस फ्रैक्चर की जो ट्रीटमेंट है, जो भी हो सकता था, अलग प्रकार के इंजेक्शंस, बोन्स को मजबूत करने की दवाइयां, और विद इन 1 वीक फिर दादी पेन फ्री हुई। तो मुझे सबसे पहले जो अनुभव हुआ वो एक पीरियड था कि बुद्धि जैसे ही एकाग्र हो जाती है, तुरंत क्या चीज कहाँ है वो हम डायग्नोस कर सकते हैं। ये तो हो गया स्थूल डायग्नोसिस, उसी तरह विकारों का डायग्नोसिस कर सकना। जितना फास्ट हम विकार का डायग्नोसिस कर सके, ये मोह है, ये काम है, ये लोभ है, ये अहंकार है, ये मान चान की इच्छा है। कहा जाता है कि योगी के जीवन में, क्योंकि योगी में पवित्रता की पावर होती है, ब्रह्मचर्य की पावर होती है, तो योगी जो भी बनता है, ब्राह्मण जो भी बनता है, उसमें प्योरिटी की पावर तो है ही। और प्योरिटी की पावर होने के बाद और बहुत सारी तपस्या करने के बाद, कुछ समय के बाद उसके जीवन में फिर सफलता प्राप्त होनी चालू होती है। पर वहां ही रियल माया जो है वहां से चालू होती है। फिर कीर्ति, मान, सम्मान। योगी के जीवन में कीर्ति जो है एक विष के समान है। जो लोग महिमा करना जब चालू करते हैं, मान सम्मान मिलना जब चालू करते हैं, तब रियल माया चालू होती है। कि वो और इच्छा होती है, जैसे बाकी चीजों का भी एक चस्का होता है, वैसे उसका भी एक चस्का होता है, वो चाहिए। जैसे नागेश भाई बोल रहे थे ना, पहले तो माइक हाथ में लेने से डरते, पर एक बार हाथ में आ गया तो छोड़ने की इच्छा नहीं होती फिर चाहिए, बहुत ज्यादा देर चाहिए। तो वो भी जैसे एक माया है। तो ये माया का डायग्नोसिस कर सकना, जैसे बाबा ने कहा परवश, किसके परवश? विकारों के अधीन हो सकती है आत्मा, संस्कारों के अधीन हो सकती है, परवश हो सकती है स्वभाव के, कोई संस्कार के। सबसे मुख्य इसमें से कोई संस्कार या कोई विकार, यदि जैसे बाबा कहते हैं ना, क्रोध के वशीभूत को हो जाता, कोई हो जाता है। एक तो हम हो सकते हैं खुद, जब विवेक नष्ट हो जाता है हमारा, जब हम क्रोध के वशीभूत होते हैं। तो बाबा ने इसके लिए विधि बताई कि हमेशा ये समझो कि ये संस्कार मेरा है ही नहीं, क्योंकि अपनापन है तो, मेरापन है तो अपनापन है, और अपनापन है तो फिर अधिकार, दोनों तरफ से ही है। तो उसको हम अपना मान लिए विकारों को, तो ये संस्कार मेरा है ही नहीं। हमेशा ये समझो कि ये मेरे कौन से संस्कार है, आदि अनादि जो संस्कार है बस वही मेरे है, बाकी ये मेरे संस्कार नहीं है। द्वापर वाले, ये मेरे संस्कार नहीं। और कोई दूसरी आत्मा अगर परवश है तो उसके लिए भी बाबा ने कहा, क्या समझो? कोई क्रोध कर रहा है, गाली दे रहा है, निंदा कर रहा है, तो क्या समझो? ये परवश है। कभी बाबा ने परोपकारी पर मुरली चलाई थी, उसमें 9 पॉइंट से 8वें नंबर का पॉइंट था परोपकारी अर्थ आत्मा, अर्थात कि जो परवश जो आत्मा है उसके प्रति भी रहम दिल। कभी चली थी नहीं 79, कभी बहुत पहले चली थी परोपकारी पर। तो इस तरह से मतलब एक ये मुरली बाबा ने जो शुरुआत की, कि शुरुआत की ब्राह्मण श्रेष्ठ संसार है, वहां से शुरुआत की बाबा ने। विशेष आत्माओं का संस्कार है, न्यारा प्यारा ये संस्कार है। फिर बाबा ने धीरे धीरे आगे चलते चलते कारण बताए क्यों ये विस्मृति हो जाती है, एकाग्रता की कमी है। स्वयं और समय को देखो, एकाग्रता की कमी, एकाग्रता की कमी के, एकाग्रता से क्या क्या फायदे होते हैं। और जो आत्मा एकाग्र नहीं, फिर वो परवश होती है, परवश होती है आत्मा तो क्या क्या होता है, इस तरह की सारी बातें वहां आ जाती है। तो और मंजू देवी ने जैसे कहा, एकाग्र होने के लिए क्या क्या करे? इच्छाओं को कम करना, जितनी इच्छाएं कम उतनी आत्मा एकाग्र, जितनी वहां यहां। तो बहुत बड़े बड़े, ऐसा कोई भी आत्मा नहीं है यहां आने वाली कि जिसने त्याग किया नहीं है। बड़े बड़े त्याग करके हर आत्मा यहां आई है, परंतु यहां आकर हम अपने ही त्याग को भूले हुए हैं। तो फर्स्ट स्टेप है कि हम अपने को याद दिलाएं कि मैंने क्या क्या त्याग कर, हम जो इतना सारा त्याग कर आए हैं, किस लिए आए थे? किसी मनुष्य के मान को प्राप्त करने के लिए। भगवान यहां हमें मान दे रहा है, और हम चाहिए कि कोई मनुष्य हमने कोई एक छोटी मोटी सेवा की उसका वो मान करे या हमें मान ले। या कोई साधन प्राप्त करने के लिए आए थे हम यहाँ, मान प्राप्त करने के लिए आए थे, तो साधनों के भी वशीभूत हो जाते हैं। बहुत सारे उदाहरण तो दे दिए मंजू बहन ने। इच्छाएं इतनी ज्यादा है कि हर दिन नई नई इच्छा उत्पन्न होती है, और हमें अपनी इच्छाओं का ज्ञान नहीं होता है। ये भी एक इच्छा है, जो जैसे मैंने उस दिन कहा ना, माया अर्थात माया की परिभाषा है हर वो चीज, हर वो वस्तु, हर वो बात जो ईश्वर और ईश्वर से हमारा जो नाता है उसके बीच में जो आती है, वो हर एक चीज माया है। फिर वो चाहे कुछ भी हो,
हम किसी को सुख भी दे रहे हैं परंतु मर्यादा को छोड़कर सुख दे रहे हैं, और हमारा उसको सुख देने की वजह से हमारी बुद्धि विचलित हो रही है, वो भी माया है फिर हमारे लिए। इतनी रॉयल माया है। जैसे वो कहा जाता है, एक व्यक्ति था जो इतना निकम्मा था कि उसको इच्छा ही नहीं थी काम करने की, तो उसने एक ऐसा जॉब लिया कि जिसमें खाली रात नाइट ड्यूटी थी, जो भैंसों का एक तबेला था वो खाली उनके तरफ ध्यान देना बस। तो वो तो दिन भर भी सोता था, रात में भी सोना। उसने सोचा कि चलो यहाँ काम करते हैं, पर उसके मालिक ने एक शर्त रखी कि जब सारी भैंसें सो जाएगी तभी तुम सोना। उसने कहा ठीक है, बहुत ही आसान काम है ये। तो सारी भैंसें सो गई, एक भैंस जागी थी, तो उसने कहा कि बस अब ये जैसी सो जाएंगी मैं सो जाऊंगा। तो वो सोई तो दूसरी जाग गई, तो उसने सोचा कि अभी जैसे ये सो जाएगी मैं सो जाऊंगा। फिर वो सोई तो तीसरी जाग गई। तो ऐसे करते करते इच्छा ऐसी है, एक सोती है तो दूसरी जागती है, एक सोती है तो दूसरी जागती है, कभी पूरी नहीं होती है इच्छा है। तो हमको आज ये चाहिए तो कल वो, ये चाहिए तो कल वो कभी इच्छा पूरी नहीं होती।
नींद की गोली खिला देता तो काम खत्म हो
जाता। जो सिकंदर की बात कर रहे थे, वो भी जो दांडिया या कल्याण ऋषि के पास जब सिकंदर जाता है, तो वो उसको उसका जो सेनापति रहता है वो उसको कहता है कि ये सिकंदर महान है, इनको प्रणाम करो। बोलता मैं नहीं जानता किसी सिकंदर महान को, मेरे शरीर पर पड़ने वाली जो सूर्य की किरणें उसके बीच में तू खड़ा है, हट जा वहां से। वो उसको ऐसा कहता है, मेरे शरीर पर सूर्य की जो, वो ऐसा नंगा लेटा रहता है नीचे और वो उधर से दोनों आते हो, तो मेरे शरीर पर सूर्य की किरणें जो पड़ रही है उसमें बीच से तू हट जा। वो उसको कहता है कि तू व्यर्थ ही संसार में भटकता फिर रहा है। सिकंदर को कहता है तुझे लग रहा है तू सब दुनिया को प्राप्त कर लेगा। वो उसे एक प्रश्न पूछता है कि ये दुनिया को तो जीत लेने के बाद आगे क्या करेगा, ये दुनिया तो तू पूरी जीत लेगा, नेक्स्ट व्हाट? तो सिकंदर फिर वापस दुखी हो जाता है, फिर मैं क्या जीतू, ये दुनिया तो मैं जीत लूंगा उसके बाद क्या करूं। तो वो कहता है कि तू दुनिया को जीतने के बाद भी भिखारी ही रहेगा। बाबा कहते हैं ना परवश आत्मा अर्थात भिखारी। तो तू जीतने के बाद, जिसने अपने मन को जीता है बस वही राजा है। बाकी ये तो जो लूटपाट कर रहा है और भारत में घुसने का प्रयत्न कर रहा है और सारी दुनिया में को जीत रहा है, इससे तुझे कुछ प्राप्ति नहीं होगी। इसके लिए दिखाया ना सिकंदर जब गया तो उसने क्या किया, दिखाया है कि दोनों हाथ खाली है उसके, कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ उसको। तो इच्छाओं को कम करना, मान शान, ये डायग्नोस करते आना चाहिए ये, और वो होगा केवल एकाग्रता से बाबा के सामने। जैसे मैंने अपना बताया कि एक दिन मैं बैठ गया और वो सारा सामने रखा कि ये है, तो तुरंत मुझे स्ट्राइक हुआ कि ये वो हो सकता है। तो उसी तरह हम अपने अंदर के जो विचार, जो विकार, जो संस्कार, जो माया, जो कमजोरी है वो सामने रखे और फिर अपने आप को डायग्नोसिस करे कौन सी बीमारी है मुझे। मोह की है, रोग है, अहंकार है, ईर्ष्या है, द्वेष है, मद मत्सर क्या है इसमें से, वो डायग्नोसिस फर्स्ट होना चाहिए। हमारा डायग्नोसिस ही नहीं हो रहा है और हम भटक रहे हैं, इसके पास उसके पास उसके पास उसके पास। डायग्नोसिस नहीं होता तो पेशेंट भटकता है। बहुत सारे जन्मों का है, जन्म जन्म के महारोगी है। तो रोज बाबा को, जब कल की मुरली में जो था ना, बाबा को अपनी दिनचर्या पूरी जीवन कहानी सुना दो। ये काम कोई एक दिन का काम नहीं है, रोज। या फिर हम जो पांच स्वरूपों का अभ्यास करते, पहले परमधाम में है, फिर सतयुग में है, फिर द्वापर में है, जब संगम पर है उस समय भी हम अपने रोज बाबा को एक शॉट में कि कैसे ये और फिर बाबा के पास है और अभी ब्राह्मण बने, उसमें वो पांच स्वरूपों के अभ्यास में अपनी जो दिन जीवन कहानी ज्ञान में आने की या ज्ञान के बाद की, वो थोड़ा एक कुछ सेकेंड या कुछ मिनट, एक या दो मिनट उसमें डाल दे, तो वो भी हो गया। जो बाबा कहते हैं ना अपनी जीवन कहानी बाबा को लिख के बताओ, वो एक करना है। तो वो हम थोड़ा रोज स्पष्ट होता है कि कैसे मैं यहां था, यहां था, यहां था, यहां पर मैं ज्ञान में आया और उसके बाद में ये, वहां से अब तक ये जर्नी, अब ये जो जर्नी है इसका ग्राफ कैसा रहा, ऐसा रहा कि नीचे ऊपर होते रहा, मैं कितनी बार नीचे गया और कितनी बार उठा, कौन सी वो कमजोरी है जो बार बार आती है और बार बार मुझे नीचे गिराती है, कौन सी वो कमजोरी है कि जिसके वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, एक ही ऐसा कुछ है वो मेन पॉइंट, उसको डायग्नोस करना और उसको पकड़ना और फिर सारा अटेंशन उसके ऊपर फोकस करना और उससे मुक्त होना। तो ये काम हमको करना है, विकारों का डायग्नोसिस, निदान करते आना चाहिए अपने ही विकारों का, दूसरों के डायग्नोसिस करने के लिए दूसरों का नहीं करना कि इसमें क्रोध बहुत है, इसमें लोभ बहुत है, दूसरों का नहीं, स्वयं का, ठीक है। तो इस तरह से दूसरों के लिए एकाग्रता दूसरों का तुरंत कर सकते हैं और ओवर डायग्नोसिस करते हैं। एक बीमारी नहीं, हम 10 बीमारी बता सकते हैं दूसरों की। ये नहीं, इसमें तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। जितनी जो हमारी करीब आत्माएं होती ना, उन इसके लिए फैमिलियरिटी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बहुत ज्यादा किसी को जानने का प्रयास नहीं करना या बहुत ज्यादा किसी के नजदीक नहीं जाना, क्योंकि अगर कोई एक आत्मा है, जैसे इनको बहुत मानते, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छे बात करते हैं, बहुत अच्छा चिंतन है इस व्यक्ति का, हम दूर ही रहे उससे, उसको सुने पर उससे दूर, उससे अगर आप बहुत ज्यादा उसके नजदीक गए तो फिर उसके अवगुण देखना चालू करोगे, फिर बहुत सारे अवगुण उसके दिखने चालू हो जाएंगे, फिर आपको उसके प्रति जो सम्मान है एक आत्मा के प्रति वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसके लिए आप यदि जीवन में किसी को बहुत मानते हो या समझते हो कि ये बहुत अच्छा है, उससे दूर ही रहना हमेशा।
खतरा
उसको सुनना भले रोज, परंतु उससे दूर रहना, क्योंकि उसके आप अगर नजदीक जाते हो तो आपको दिखेगा अरे इसमें तो वही चीज है जो हम में है। जैसे कुमारों का होता है सेंटर्स पर, कुमार जब ज्ञान में आते तो कितना नशा होता है, बहने उनको देवियों जैसी दिखती है, कुमार को सेंटर हो गए जैसे तो साक्षात देवी है, पर जैसे धीरे 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 वहां रहने लगते हैं, रोज आने लगते हैं, और फिर पता चलता है कि इनमें तो वही सब है, हमसे भी ज्यादा है अवगुण इनमें, तो फिर सम्मान कम हो जाता है। इसके लिए चाहे कोई भी महारथी हो, उनको भले सुनो पर थोड़ा सा डिस्टेंस ही मेंटेन करके रखो, कि बहुत ज्यादा पर्सनल बार बार जाके मिलना है, ये मतलब ठीक है जरूरत पड़ी तो जाओ, पर बहुत ज्यादा हम जाते हैं तो अवगुण दिखना चालू होते हैं। फिर आप देखेंगे, देखा इन्होंने भी ऐसा किया, देखा इन्होंने भी ऐसा ही किया, योग का समय है और सो रहे हैं, ये सब दिखेगा। अमृत वेला है, क्लास तो बहुत बढ़िया कराते हैं अमृत वेला पर, और आज देखा तो अमृत वेला है ही नहीं। क्योंकि देखो क्लास कराना एक कला है, जरूरी नहीं है उसका धारणाओं से बहुत ज्यादा संबंध है, नॉट नेसेसरी। कोई 8 बजे तक सो सकता है और 9 बजे से 10 बजे तक अमृत वेला कर ऐसा क्लास कराएंगे, आप बोलेंगे ऐसा क्लास आज तक कभी सुना ही नहीं अमृत वेला, और जरूरी नहीं है उसने किया होगा, वो सो रहा होगा 8 बजे तक।
एक बार है ना, तो क्या हुआ कि एक वहां आंगन में बहुत झगड़ा हो गया था, क्योंकि वीआईपी लाना था ना, जिस बहन को लाना था ना, तो उसको नहीं ले गया, उसको छोड़ के गए थे भाई। तो फिर इतना झगड़ा हुआ भाई, जब आयन बहुत किया कि इतना छोड़, और उसके बाद तुरंत ही उसका एंगर मैनेजमेंट था उनका। तो क्या हुआ कि ये भाई फोन करने आया, तो मुझे तो नहीं पता था एंगर में क्या हुआ। तो एक भाई को मैंने बोला कि आप ऊपर सेशन करके, मैं भी वो बहन से तो थोड़ी दोस्ती भी थी, प्रभावित भी थी बहुत, और मुझे मालूम है सब। तो मैंने उसको बोला कितना अच्छा है ना, आपको तो बहुत अच्छा लगा। बोला इतना बढ़िया क्लास मैंने कभी ऐसा नहीं सुना, तो कुछ अच्छा था ना। तो उसने बोला कि ऐसा कि इतना बढ़िया क्लास था कि मैं तो कभी ऐसा नहीं समझा था कि जो व्यक्ति इतना एंगर का इतना रूप बताया, और वहां जाकर इतना अच्छा उसने क्लास कराया, ये तो मैं नहीं तो मतलब कि
भाषण देना वो एक कला है जो कि बार बार करो तो डेवलप होती है, परंतु उसका जरूरी नहीं धारणाओं से संबंध है। जैसे कोई बहन है वो जा रही है टाइम मैनेजमेंट का कहीं कोर्स कराने, स्टेशन से उतरी ट्रेन से जो 10 मिनट रुकती है, और वहां पे कुछ इतना लेट कर दिया उसने कुछ खरीदने पे कि ट्रेन छूट गई। कोर्स किसका कराने जा रही है? टाइम मैनेजमेंट। इस तरह से
दूसरों का कराया ना।
तो कल तो सुशील भाई सुनाएंगे कुछ, और परसों फिर ग्रुप नंबर 1 माता जी, ग्रुप नंबर 2 कुमुद बहन, ग्रुप नंबर 3 ये तो बहनों का पूरा हो गया, चिमन भाई ग्रुप नंबर 3
ओ बहन जी है ना, एक बेटा
नहीं, बहने 3 हो गए ना, तीन बहने तीन भाई। तो ग्रुप नंबर 1 माता जी, ग्रुप नंबर 2 कुमुद बहन, ग्रुप नंबर 3 चिमन भाई, ग्रुप नंबर 4 ये अपना देवेंद्र भाई बोल रहे
हैं, 4
फिर उसके बाद में बहनों के ऊपर, बहनों की तरफ वापस आएंगे। अच्छा, ओम शांति।
है।